Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kaivalya Upanishad, presented by Swami Sri Pratyak Bodhanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kaivalya Upanishad, presented by Swami Sri Pratyak Bodhanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tachayara Prunimahe Gatum Yakyaya Gatum Yakyapataye Daivihi Swastirastunah Swastir Manushebhyah Urtvam Jigatu Beshajam Shanno astu dvipade sham chatushpade om shanti shanti shantihi yo brahmanam vidadati purvam yo vai vedascha prahinoti tasmai tamha devam atma buddhi prakasham Mumukshurvai Sharanamaham Prapadye Om Shanti Shanti Shantihi Nidaye Sarva Vidyanam Vishaje Bhavaroginam Gurave Sarva Lokanam Dakshinamurtaye Namaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Aspadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam.
Mere piche bolna.
Saraswati Namastubhyam
Saraswati Namastubhyam
Varate Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada.
Upanishad Kaivalya Upanishad.
Om Atha Ashvalayana
Om Atha Ashvalayana
Bhagavantam Parameshtinam Upasametyo Vacha Adihi Bhagavan Brahma Vidyam Varishtam
Adihi Bhagavan Brahma Vidyam Varishtam
Sada Sadvi Sevyamanam Nigudam Yayachirat Sarva Papam Vyapohya Parat Param Purusham Yati Vidvan Tasmai Saho Vacha Pitamahascha Shraddha Bhakti Dhyana Yogat Avaihi Na Karmana Na Prajaya Dhanena Tyake Naike Amrutatva Manasuhu Parena Nakam Nihitam Guhayam Viprajate Yat Yatayo Vishanti Vedanta Vigyana Sunishchitartah Sanyasa Yogat Yatayah Shuddha Sattva Te Brahma Lokeshu Parantakale
Te Brahma Lokeshu
परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे श्रुति भगवती ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए संन्यास का वर्णन करती है। इसका अर्थ यह होता है पुरुषार्थ निश्चय है। पुरुषार्थ भले चार दिखे पर पुरुषार्थ एक ही है, मोक्षैव पुरुषार्थ है, क्योंकि और तीन जो है अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो कोई इसको सचमुच में चाहता नहीं है। आखिर सब मोक्ष ही चाहते हैं, पर इसके द्वारा मोक्ष मिलेगा या इसमें परम सुख है, इस भ्रांति के कारण धर्म के द्वारा इस लोक में अर्थ काम और अन्य लोक में अर्थ काम की इच्छा करते हैं। तो जिसकी बुद्धि में ये निश्चय हो गया अकृत है नास्तिक कृते न, जो अकृत है माने नित्य है, जो जन्य नहीं है, नित्य होता है वो पैदा नहीं हो सकता है, और जो पैदा होता है वो नित्य नहीं होता है। फिर भी सावधान रहना, एक होता है प्रवाह नित्यत्वम, बदल बदल के रहता है। हम यहां कूटस्थ नित्य की चर्चा करते हैं जो कभी भी बदलता नहीं है, ध्रुव जो है। ऐसा जो कल्याण स्वरूप शिव स्वरूप आनंद स्वरूप मोक्ष है, आत्मा है, उस मोक्ष स्वरूप आत्मा है, उसकी प्राप्ति कर्म से नहीं हो सकती, न प्रजा से हो सकती है, न धन से हो सकती है, माने तीनों पुरुषार्थ का निषेध कर दिया। पुत्र मानी काम, धन मानी तो सीधा स्पष्ट अर्थ है, और लोक पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थाय अत भिक्षाचर्याम चरन्ति। ये तीनों इच्छा को परित्याग करके मोक्ष हमें चाहिए, और मोक्ष का साधन सिर्फ श्रवण मनन निधिध्यासन है। ये तो बंधन को बढ़ाएंगे या बनाए रखेंगे, ऐसे सब धन पुत्र और लोक की इच्छा का परित्याग करके संन्यास ग्रहण करके गुरु के समीप जाकर जो श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधन में लगा रहता है उसी का नाम है जिज्ञासु। मुमुक्षु सब है, जिज्ञासु बहुत कम है। मुमुक्षु से जिज्ञासु बनना एक बहुत बड़ी बात है। मोक्षाय इच्छा और ज्ञातुम इच्छा बहुत बड़ा फर्क है। मोक्ष की इच्छा सबको है, छूटना चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं, मृत्यु से छूटना चाहते हैं, बंधन से छूटना चाहते हैं, और अपनी अक्ल से उसके उपाय में लगे हुए हैं। ये सब संसारी है, पर जिसको मालूम है, समझ में आ गया कि मुक्ति जिसको हम चाहते हैं वो ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है, अविद्या निवृत्ति मात्र से प्राप्त हो सकती है, कोई कर्म साधन से नहीं हो सकती है। एक बार ये स्पष्ट हो गया विवेक, तत्काल उस साधन का भी परित्याग। साध्य साधन लक्षण संसार है, उसका परित्याग करके सगुरुमेव विगच्छेत् लोकान् परीक्ष्य ब्राह्मणः निर्वेदमायात् वैराग्यं कुर्यात्। फिर क्या करता है,
वैराग्य आने के बाद गुरुमेव अभिगच्छे गोवा नहीं जाता है। कई लोग गोवा गए थे थोड़े साल पहले, दुनिया ने हमको क्या दिया, दम मारो दम वाले, दे आर सिंसियर, दुनिया ने कुछ नहीं दिया, पर गुरु के पास नहीं गए, गोवा गए, गड़बड़ है। फिर यहां भारतीय संस्कृत में शंकराचार्य महाराज कहते हैं वृद्ध व्यवहार है, जो जीवन में कुछ ऐसा आता है हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है संसार में, तो मालूम है हमारे पिताजी भी प्रेमपुरी में जाते थे, दादा हरिद्वार जाते सन्यासी के पास, मालूम है वृद्ध व्यवहार देखा है कि ये सब लोग को वहां जाके शांति मिली और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए गुरुम एव अभिगच्छे। और एक बात होती है, हमें क्या चाहिए वो स्पष्ट है तो हमको मालूम है कौन हमारा गुरु हो सकता है। हमको बाल कटवाना है तो हम करियाना की दुकान में नहीं जाएंगे, है कि नहीं, और करियाना की दुकान में जाके आए दूसरी कुछ नहीं चीज नहीं मांगे, कपड़े नहीं मांगे, क्यों, हमको मालूम है कहां क्या मिलता है। ऐसे जैसे कोई संगीत पढ़ाए 5 साल तक और आगे पढ़ना चाहता है तो उसको मालूम है कौन हमको संगीत में आगे ले जा सकता है, 1 मिनट में मालूम पड़ जाता है ये हमसे ज्यादा जानता है और आगे ले चल सकता है। तो सभी क्षेत्र में पीएचडी होना है तो आई नो वेयर टू गो, हु आर द प्रोफेसर हु कैन हेल्प मी, द गलेबिलिटी इज विथ मी नॉट विथ माई टीचर। हमको कोई बेवकूफ बनाए तो इसका कारण मैं बेवकूफ हूं और नहीं है। हमें मालूम है हमें ब्रह्म चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए, और वो कौन दे सकता है मालूम है हमको, वही दे सकता है। स गुरु में वहां भी गच्छे, कौन सा गुरु है, क्षत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, क्षत्रिय तो है कम से कम। मनुष्य समग्र वेदांत को अच्छी तरह से अध्यापन करा सकता है। ऐसे गुरु के पास गए और क्या होता है, गुरु के पास लड्डू नहीं, श्रवण मनन निधिध्यासन, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य। अब देखो ये मंत्र जो है आपने अभी पढ़ा, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, ये मंत्र यहां भी है कैवल्य में भी है और यही मंत्र मुंडक उपनिषद में भी है। मुंडक माने जो सन्यासी है उसका उपनिषद यही है, मुंडियों का उपनिषद है। अब यहां देखिए मंत्र में थोड़ा फर्क है, परामृताहा मुंडक में है और कैवल्य में दिया है परामृतात्, एक में पंचमी है परामृतात् परिमुच्यन्ति, इसका हम आपको बताएंगे दोनों में क्या फर्क है। आइए आज का बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया मंत्र है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः। अब किस प्रकार से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है उसका पूरा वर्णन है। वेदांत वाणी क्या, वेद के अंत में जो अध्याय पढ़े हैं, जो मंत्र है उसी का नाम है वेदांत। वेद 4 है इसलिए चारों वेद के अंत में जाते हैं वेदांता, और कोई अर्थ नहीं, वेदों का जिसमें अंत है ये सब गड़बड़ अर्थ है। वेद के अंतिम भाग में जो है इसलिए उसका नाम वेदांत है, पोजिशनल नेम। वेदांत, वेदांत नाम उपनिषद, दूसरा नाम उसका क्या है, उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है जो अपने सबसे नजीक है प्रत्यगात्मा, उसके विषय में निश्चित ज्ञान, वो उस आत्मा की प्राप्ति कराता है और संसार की निवृत्ति कराता है और संसार में जो रोग है जन्म है उसको शिथिल करता है, उसी का नाम है उपनिषद। अब उपनिषद में वेदांत में जो विज्ञान है, वेदांत विज्ञानम, एक होता है ज्ञानम, दूसरा होता है विज्ञानम। जब दो शब्द साथ में आते हैं तो हमको थोड़ा अर्थ में भेद करना पड़ता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ज्ञानम का अर्थ होता है जो वस्तु जैसी है उसको ऐसा ही समझना, रज्जू को रज्जू के रूप में जानना, घड़े को घड़े के रूप में जानना, ऐसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आत्मा को उसी रूप में निश्चित रूप से जानना। कई लोग यहां फर्क करते हैं ज्ञान विज्ञान में। ज्ञान का अर्थ कहते परोक्ष ज्ञानम, परोक्ष ज्ञान इनडायरेक्ट नॉलेज, एंड विज्ञान का अर्थ करते अपरोक्ष ज्ञानम डायरेक्ट नॉलेज। जैसे हिमालय में फ्लावर वैली है, बद्रीनाथ जी महाराज है, आप कभी गए ही नहीं तो उसका ज्ञान कैसे होगा। मैं पूरा वर्णन करूंगा, तप्त कुंड है, जोशीमठ के बाद कैसे जाया जाता है, शंकराचार्य महाराज ने वहां कैसे स्थापना की ठाकुर जी की, और कैसे रावल जी नमुद्री पाद अभी तक पूजा कर, सब मैं बोल सकता हूं आपको। ये ज्ञान कैसा होगा आपका, परोक्ष है। आप जब वहां पहुंचेंगे तो ज्ञान क्या ऐसा है, अपरोक्ष, आपको मालूम पड़ जाएगा। पर यहां जो है वेदांत में आत्मा ब्रह्म इति, पहले अस्थि ज्ञान है, हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से गुरु पढ़ाते हैं यह आत्मा प्रत्येक आत्मा परब्रह्म कैसे, परब्रह्म प्रत्येक आत्मा कैसे है, फिर उसमें निश्चित मैं वह ब्रह्म हूं और मैं ही वह आत्मा हूं जो ब्रह्म है, इस प्रकार से अविद्या निवृत्ति जिसकी हो जाती है आत्मा के विषय में, उसी को कहेंगे विज्ञानम, वेदांत विज्ञानम, तस्य अर्थः परमात्मा। हमारे स्वामी प्रातः स्मृति अखंड जी महाराज एक दिन हाथ उठा के कह दिया हमको कि कहीं भी उपनिषद में परमात्मा शब्द नहीं आता है, सब जगह आत्मा शब्द आता है। आत्मा वा इदम अग्रे आसीत, आत्मा ही शब्द है। वे समय का अभाव है, नितर आत्मा शब्द की सिद्धि करे तो पूरा वेदांत मिल जाता है। यच्च आपनोति यदा दत्ते यच्चाप्ति विषयानि है, यच्चास्य संततो भाव आत्मा शब्द इति कीर्त्यते। जो सब में व्यापक है वो आत्मा है। यच्च आपनोति, आप नवम गण में है, यदा दत्ते, जो सब में अपने को समा लेता है सुषुप्ति काल में प्रलय काल में, यच्च अति, जो विषय का भोग करता है जागृत में स्थूल भोग, स्वप्न में सूक्ष्म भोग, और सुषुप्ति में आनंद भोग जो है, अति इति अधभक्षण से बनता है। यच्चाति विषयानि कर यच्चास्य संततो भाव, जिसका तीनों अवस्था में, तीनों अवस्था का अभाव होने पर भी जिसका अभाव नहीं होता है वो है आत्मा। चार गण से आत्मा शब्द की स्थापना कर दी। ऐसा जो आत्मा है वही परम है, परमा परस्मात अभिन्न आत्मा इति परमात्मा। तो परम ब्रह्म से अभिन्न आत्मा का नाम परमात्मा है, विज्ञेय है। तो तस्य वेदांत विज्ञानम तस्य अर्थ परमात्मा विज्ञेय, आत्मा ही परब्रह्म विज्ञेय। सो अर्थ सुनिश्चितार्थ, सुनिश्चित ये शांते, सुनिश्चित मैंने सुष्टु निश्चित है, ये डावाडोल नहीं, पक्का संशय रहित विपर्य रहित जो आत्मा के विषय में ज्ञान है उसको कहते हैं सुनिश्चित अर्थ, वही ब्रह्म मैं हूं। वही आनंद मानी मैं हूं ऐसा। अभी उपाय बताते हैं महाराज, हमारी अंदर ये ज्ञान निष्ठा क्यों नहीं होती है? इसका अर्थ कहते हैं उपाय संन्यास योगात। ये संन्यास उपाय है उसके लिए। देखो एक बात है, जब तत्व का चिंतन करना है तो और कोई इल्लत खटपट रहेगी तो चिंतन कैसे करोगे? आपको दृष्टांत बहुत सरल देते हैं। हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं स्कूल में यूनिवर्सिटी में, तब आप उनसे नौकरी भी करवाते हैं, घर का काम भी करवाते हैं और पढ़ने के लिए भेजते हैं? नहीं, हम लोग कहते हैं हम सब संभाल लेंगे, हम काम करेंगे, तेरी फी देगी, तेरा एक ही काम है क्या? अध्ययन करो, तब तो वो ठीक पढ़ सकता है। एक जब सामान्य यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए हम उसको संन्यास देते हैं, है कि नहीं, इस समय शादी नहीं करनी पढ़ने के बाद, इस समय कहीं और कुछ नहीं करना है, बस पढ़ो, सबसे छुट्टी करके आपको पार्टी में नहीं आना है, पढ़ो, इस जब एक अपरा विद्या के अध्ययन में हम उसको सबसे मुक्ति कर देते हैं तो परा विद्या में भी आवश्यक है पुत्र वित्त ये सब चिंता से मुक्त होकर उसमें अपने मन को लगाए। ठीक है, इसलिए यहां तो जो वर्णन किया था तेज संन्यास योगात सर्व कर्म परित्याग लक्षण योगात केवल ब्रह्म निष्ठा स्वरूप योगात यतयः यत्नशीलाः, प्रॉपर एफर्ट, जो उचित प्रयत्न है ये सबका परित्याग। दूसरा अर्थ ये भी है कि जो मैं पूर्ण हूं उस आनंद में ये धन से प्राप्त होने वाला, कर्म से प्राप्त होने वाला, पुत्र से प्राप्त होने वाला सब आनंद उसमें आ ही जाते हैं, फिर इसकी प्राप्ति की क्या जरूरत है? माने तत्व का ज्ञान और संन्यास दोनों युगपत है, ज्ञानम संन्यास लक्षणम। अब कहते हैं इनका मन संन्यास के द्वारा शुद्ध हुआ है, शुद्ध सत्वा अथवा शुद्ध अंतकरण होने पर संन्यास ग्रहण किया है। आरुरुक्षो मुनि योग कर्म कारण मुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब चित्त शुद्धि के जितने भी साधन कर्म थे उसका परित्याग प्राप्त होता है। जानबूझ के मुझे बात कहनी पड़ेगी शुद्ध सत्वाः शुद्धम सत्वम येषाम, सत्व मानी चित्त अंतकरण मन, मन की शुद्धि क्या है? अब देखिए दो शब्द में क्योंकि टाइम मेरे पास यहां नहीं है, आज मंत्र पूरा करना है हमको। हर एक व्यक्ति के अपने अपने राग द्वेष होते हैं। राग का अर्थ होता है ये हमें मिले और हमारे पास बना रहे, द्वेष का अर्थ होता है इससे ये हमें नहीं चाहिए और जिससे हम छूटना चाहते हैं। अप्राप्तस्य प्रापणम रागः, प्राप्तस्य रक्षणम रागः। पैसा नहीं है पैसा मिले, दूसरी इच्छा क्या है? उसका खर्चा ना हो बना रहे, इसलिए जब कोई मुफ्त देता है, कोई हमको टिकट देता है बहुत खुश होते हैं, क्यों? हमारा पैसा क्या हो गया? बच गया। इसी ने कहा हमारी पत्नी बाजार गई है, हमको चिंता हो रही है क्योंकि वर्षा हो रही है। लेकिन चिंता क्यों करते हो? किसी की दुकान के बाहर खड़ी हो जाएगी, बस वही तो चिंता का कारण है। तो दुकान के बाहर खड़ी होगी तो बहुत खर्चा करेगी, वहां जल्दी घर आ जाएगी तो अच्छा होता है। तो इसी प्रकार से हमारा पैसा बचे ये बड़ी इच्छा होती है, दूसरा करता करे सर, इसको कहते राग है। द्वेष क्या है? जिससे हम बचना चाहते हैं और मिल जाए तो उसे छूटना चाहते हैं, है कि नहीं? मॉस्किटो मच्छर से क्या करते हो? मच्छर से क्या करते हैं? वो दिख भी जाए तो उससे बचना चाहते हैं, और वो हमारे शरीर पे लग जाए तो क्या करते हैं उसको मोक्ष दे देते हैं ना, ये करते हैं। द्वेष, हमारे सर पे बाल रहे राग है ना, और है और अच्छे रहे ये राग, और सफेद ना हो, सफेद बाल के प्रति क्या होता है? द्वेष होता है। ये सब है, राग द्वेष पूरा जीवन है। अमुक भोजन अच्छा लगता है, अमुक नहीं अच्छा लगता, राग द्वेष। अभी देखो एक बात भूल मत करना, राग द्वेष होना चाहिए कि नहीं? आप लोग ने कई बार सुना होगा राग द्वेष को छोड़ दो, है कि नहीं? और हां हां भी कहा होगा। पार्किंसंस का प्रॉब्लम होता है ना, ये सबको हां हां करते हैं, राग द्वेष न हो ऐसे कहते हैं। अभी एक नया राग क्या आया, राग द्वेष न हो। और द्वेष किससे हो गया? जो राग द्वेष जाते ही नहीं उससे द्वेष हो गया। तो हमारे राग द्वेष बढ़ गए कि कम हुए? ये क्या बात है, वदतो व्याघातः है, बोलने में विरोध हो रहा है। राग द्वेष में कोई आपत्ति नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, सुनना, धर्म अविरुद्ध राग काम अहमस्मि। इस धर्म से अविरुद्ध राग तो मेरा स्वरूप है, विभूति है। ये पूरा विषय में कभी दूसरी बार लूंगा, यहां बहुत कंफ्यूजन है, समझना चाहिए। यहां यही है कि जो अनियंत्रित राग द्वेष है वो हमारे लिए बहुत अनिष्ट करते हैं। हम जानते हैं चीज अच्छी नहीं है, फिर भी इतना अंदर प्रेशर है, दबान है, किसके लिए जाते हैं। इसको कहते अनियंत्रित राग। मन जानते झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये राग के कारण होता है, इतना अंदर प्रेशर है। तो द्वेष और राग जो अनियंत्रित है वो हमारे लिए अनिष्टकारक है। धर्माधर्म के विरुद्ध जो है वो हमारे लिए अनिष्टकारक है। तो जिन्होंने अपने जो धर्म है उसके प्रति राग है, जो अधर्म है उसके प्रति क्या है? देखो हम लोग को वही चीज अच्छी लगती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। थ्री थिंग्स वी लाइक, फैटनिंग, इलीगल एंड इमोरल, ये तीन ही चीज अच्छी लगती है। हम सबको भजिया अच्छा लगता है, पर पेट के लिए और शरीर के लिए क्या है भजिया? मालूम है ना, हमको भी बहुत अच्छा लगता है मेदू वड़ा, क्या करें। हमने कभी पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग मालूम है ना, आजकल सुनते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, दैट इज कॉल्ड नॉनसेंस, पॉजिटिव थिंकिंग नॉनसेंस। मैंने कहा पॉजिटिव थिंकिंग का दृष्टांत दीजिए, मैं कहा कि मेदू वड़ा मालूम है ना, उसके बीच में छिद्र होता है, खोल होता है। मैंने कहा मैं पॉजिटिव थिंकिंग करता हूं कि हर रोज 9 मेदू वड़ा खाता हूं और बीच में जो छिद्र है उसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है, है कि नहीं? नहीं है, जीरो कोलेस्ट्रॉल, इसलिए मैं 9 छिद्र खा रहा हूं, होल खा रहा हूं। ऐसे क्या होगा? पॉजिटिव थिंकिंग। मेदू वड़ा को मत देखो, छिद्र को देखो, तो क्या होगा? आपका वजन क्या होगा? जैसलोक में जाने की तैयार हो जाएंगे, इस प्रकार का। तो ये तो जानते अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए तो भी लगाते रहते हैं। ये डायबिटिक वाले भी क्या है, वो जिसको डायबिटिक नहीं उसके पहले ही मिठाई खा जाएंगे, बहुत अच्छी लगती है। हमको भी डायबिटिक है, कृष्ण भगवान को डायबिटिस हुआ था, आपको मालूम है कि नहीं? क्या शास्त्र पढ़ते हो यहां के, लिखा है शास्त्र में कृष्ण भगवान को बहुत भारी डायबिटिक था। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, मधुराधिपते, बोलो। अब आपने ही तो बताया, इतना भारी डायबिटीज था उनको तो जानते हैं मिठाई अच्छी नहीं तो अभी राग है, तो उसको रोकना, दैट इज कॉल्ड राइट थिंग। सो अधर्म है, चोरी करने की इच्छा होती है, उसको रोकना गलत है। इसको कहते हैं शुद्ध सत्वाहा। जब तक ऐसे अवसर नहीं प्राप्त होंगे और अपने को हम रोकेंगे नहीं, तब तक इस पे नियंत्रण नहीं आ सकता है। इसलिए कर्म योगा में लाइफ ऑफ इंटरैक्शन, जहां ये सब बाहर आएंगे, ये जो कालिया नाग की एक एक फेड़ ऊपर आएगी उस पर श्री कृष्ण चरण का आघात करेंगे तब वो नीचे जाएगा। वही रागत दे थे उसमें जो विष था वो निकाल दिया भगवान ने।
यतयः शुद्ध सत्वाः संन्यास योगात्।
अब बढ़िया है।
ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले।
अब दो काल होता है, एक होता है परांत काल, दूसरा होता है अपरांत काल। जिस शरीर की मृत्यु के साथ सूक्ष्म शरीर भी पूरा हो जाता है, क्योंकि अविद्या नष्टा, उसको कहते हैं परांत काल। देहे बंगे, जब शरीर का नाश होता है प्रारब्ध के अंत होने पर,